जो आजादी की बात करते हैं, जो सेपरेशन की बात करते हैं, वो तो 1% ज्यादा हैं, और वो लोग हैं जो पैसे लेके ट्रेन होके अफगानिस्तान से वापस आते हैं और वो कहते हैं आजादी का नारा लगाते हैं, या 20 टीचर गए थे ट्रेन हुआ के अपने ही स्कूलों में परचम उतारने शुरू कर दिए, जिनकी हमने कॉग्निजेंस ली और उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ। देखिए, पूरे पंजाब में हैं छावनियां, सिंध में हैं, आजाद कश्मीर तक छावनियां हैं, तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर जाके कहीं छावनी बनेगी, वहां डेवलप होगी जगह, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो मैं ये समझता हूं कि छावनियों को जो पोज कर रहे हैं वो इंसर्जेंट हैं, वो हैं जो पाकिस्तान के साथ सिंसेयर नहीं है। पाकिस्तानियां पाकिस्तान के किसी से भी छावनी जो है, इट इज एन एक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म और एक्ट ऑफ डिफेंस, और एक्ट ऑफ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री।
عزتمند گوشدارو کان درود و درا باتے مروچی 29 اگست شنبه روز سال 2009 اند. مروچی مارا گپترا نے اللو بانسل گماس کے آئی ہندوستان انسٹیٹیوٹ فار ڈیفینس اور اسٹڈیز اینڈ انالیس گروپ یک کے چا سروکان آئیا کم جو سپورٹس بلوچستان بابتا بیت کے آئیا انو یک کتاب یہاں پہ بلوچستان بابتا نوشتا وہ ہمیں دوستہ ہفتہ کے تھا بازار آیا ہے تو امید کرنا کہ عربی ملکوں پاکستان ہم بیت سر بھی. جناب بانسل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. نمسکار.
خوش آمدید. نمسکار
جی. بہت بہت دھنیواد آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا. تو سب سے پہلے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ریڈیو گوانک بلوچستان ہمیشہ کی طرح اس کی یہ کوشش رہی ہے کہ انڈیا کے دانشور، انڈیا کے سیاستدان اور انڈیا کے انالیس گروپ سے رابطہ رکھے. تو اس سلسلے میں ہم نے بہت کوششیں کی ہیں اور انہوں نے اپنا تعاون جو ہے بھرپور ہمارے ساتھ دیا. اسی طریقے سے پچھلے دنوں ہماری بہت سارے دوستوں سے انٹرویوز وغیرہ ہوئے ہیں، جناب ڈاکٹر کپیلا صاحب، ڈاکٹر پرباش جوشی صاحب، مولے دائر صاحب. تو اس سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو اگر کچھ کہنا ہے تو آپ کہیے، تو پھر ہم شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام.
میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں بھی جتنے بھی اینالسٹ ہیں اور جو آج کا جو عوام ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کے پرتی سمپیتھی رکھتا ہے، اور ہندوستان میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ پاکستان کے اندر اپدرا ہو، لیکن جو بلوچ لوگوں کی جو واضح ڈیمانڈ ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، اور ان کا جو پرسیکیوشن ہے، جو ان کا ایکسپلائٹیشن چل رہا ہے، وہ بند ہو جائے.
جناب باسط صاحب، آج کل بلوچستان کے حالات بہت کشیدہ ہیں. جس طریقے سے پاکستانی اسٹیبلمنٹ یا پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہاں پر حالات پرسکون ہیں اور جو ہے بہت جلدی امن قائم ہونے والا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کس حد تک جانتے ہیں؟
دیکھیے، ابھی آج 26 اگست کو جو نواب مفتی صاحب کی شہادت کی جو سالگرہ تھی، جس طرح سے اس دن بلوچستان میں، پورے بلوچستان میں اسٹرائک ہوئی، ویل نہ کوئی گاڑی چلی، نہ کوئی دکان کھلی، وہ اپنے آپ میں ایک طریقے سے دکھاتا ہے کہ بلوچستان کا عوام آج کس قدر پاکستانی حکومت کے خلاف ہو چکا ہے. اور جو پاکستانی جو فوج کی جو وہاں پہ جو زبردستی چل رہی ہے، اس کے کس قدر اس کے خلاف ہے. پچھلا جو چناؤ ہوا تھا فروری 2008 کا، اس میں بھی جو تھا बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन थी उसने बहुत कम हिस्सा लिया था। तो जो आज जो बलूचिस्तान की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी मेरे मुताबिक जो है बलूचिस्तान के जो लोगों हैं उनकी इच्छाओं को नहीं बताती है, क्योंकि बलोच लोगों ने उस इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। अभी कुछ देर पहले मैं रहमान मलिक साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि छावनियां जो है बलूचिस्तान की तरक्की के लिए है और छावनियों में जो अस्पताल होंगे, छावनियों में जो स्कूल होंगे वो बलूचों के लिए है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर बलूचों के लिए स्कूल और अस्पताल ही खोलने हैं तो छावनियों की क्या जरूरत है। ना तो बलूचिस्तान किसी सरहद पर है और बलूचिस्तान में ऑलरेडी 4 छावनियां हैं, क्वेटा में, सिदी में, लोरालाई में, खुजदर में, उसके अलावा नेवल बेस है वहां पे 3। उसके अलावा ये नई जो तो छावनियां बनाई जा रही हैं इसकी क्या जरूरत है। और फिर पाकिस्तान के कानून के अंतर्गत जो छावनियां होती हैं ना तो वहां से प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई टैक्स ले सकती है। तो बेसिकली ये जो छावनियां हो जाती हैं एक तरीके की कॉलोनी हो जाती है इस्लामाबाद की जो बलूचिस्तान के अंदर होगी।
आपका जो फील्ड है वो डिफेंस स्टडी में रहा है, आपके जो एनालिसिस में क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान की आजादी की तहरीक को ताकत के जरिए कुचलने में कामयाब हो सकती है?
देखिए ऐसा है कि जो आवाम की तहरीक है उसको तो ताकत के जरिए कुचला नहीं जा सकता, उसको दबाया जरूर जा सकता है और वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने 2-4 बार पहले भी किया है। जैसा कि आपको मालूम है 73 में भी जो जो डिमांड थी उसको कुचला गया था। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि जो बलूचिस्तान की जो आवाम की जो जरूरी मांगे हैं उनको पूरी कर दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि आजादी हो या जो भी हो, ऑटोनॉमी हो, जो भी चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान की जो आवाम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पाकिस्तानी हुकूमत के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आवाम की जो डिमांड है उसको क्रश नहीं किया जा सकता सिर्फ मिलिट्री फोर्स के द्वारा। और आज की तारीख में पाकिस्तान की जो फौज है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और फाटा में बहुत बुरी तरह उलझी हुई है, क्योंकि तालिबान ने उनको काफी हद तक उलझा रखा है। ऐसे हालात में मेरे ख्याल से पाकिस्तानी फौजों के पास उस तरीके का जरिया नहीं है कि वो बलूच इंसर्जेंसी को क्रश कर सके।
जी बासिर साहब, पाकिस्तान की हर वक्त ये कोशिश रही है कि अपने मीडिया के जरिए या अथॉरिटीज के जरिए बलोच मुसल्ला जदोजहद को आलमी दुनिया में दहशतगर्दी का नाम दें, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं?
देखिए पहली चीज तो ये है कि बलोच जो है नेशनलिस्ट जो है वो लेफ्ट लीनिंग सेक्युलरिस्ट है। तो जब से बलोचिस्तान में ये बलोच नेशनलिस्ट का राइज हुआ है तब से तालिबान वहां से गायब हो गया है, कम से कम उस उन एरिया से जहां पे कि बलोच डोमिनेशन है। दूसरी चीज ये है कि बलोच दहशतगर्द नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो भी वहां पे वॉयलेंस के एक्ट हो रहे हैं वो जनरली पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस या रेलवे लाइंस के खिलाफ हो रहे हैं, उसमें आवाम के खिलाफ उनको टारगेट नहीं किया गया है। आप ये देखें कि जो तालिबान के जो हमले हुए हैं उसमें कितने लोग जो निरपराध लोग थे, जो इनोसेंट बाई स्टैंडर्ड थे, वो काफी मारे गए हैं। जबकि आप देखें बलूचिस्तान में जो भी वॉयलेंस के केसेस हुए हैं वो बिल्कुल टारगेटेड किलिंग्स नहीं है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं उनको टारगेट किया गया है, और अधिकतर जो कोशिश की गई है वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की, रेलवे लाइन्स, पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस, जिनको कि बलोच मानते हैं कि ये उनके प्रोविंस के जो रिसोर्सेज है उनको बाहर लेके जा रही है। और जनरली पाइपलाइंस भी उस जगह पे एक्सप्लोर की गई हैं जहां वो बलूचिस्तान को छोड़ के पंजाब या सिंध में जा रही हो। तो जहां तक सवाल ये कहना कि बलोच नेशनलिस्ट जो है दहशतगर्द है, मेरे विचार से ये गलत होगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी दहशतगर्दी का कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने आजादी या ऑटोनॉमी के लिए जो है सरकार के खिलाफ जरूर कई बार वॉयलेंट एक्शन लिए हैं जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट और टारगेटेड किलिंग की गई है, पर आवाम को कम से कम नुकसान हो इसकी पूरी कोशिश की गई है। और जब भी कभी गलती से कोई इनोसेंट मारा गया है तो बीएलए और बीआरए के स्पोक्समैन ने उसके लिए अपोलोजाइज किया है और उन्होंने उसके लिए माफी मांगी है कि गलती से हो गया है। वरना जहां तक आप देखेंगे उन्होंने कोशिश ये की है कि इनोसेंट जो लोग हैं वो सिविलियंस जो है उनको कोई कुछ ना हो।
जी मेहरबानी, आप बलूचिस्तान के तारीख से किस हद तक वाकिफ हैं कि 1947 11 अगस्त को बलूचिस्तान जब आजाद हुई ब्रिटिश कॉलोनी से, तो पाकिस्तान ने 1948 27 मार्च को उस पर कब्जा किया, इस बारे में कितना जानते हैं?
पहली चीज तो ब्रिटिश पाकिस्तान ने क्या किया, तो डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत के अंदर जो बलूचिस्तान का एरिया था जैसे क्वेटा वगैरह उसको उन्होंने पहले पाकिस्तान में मिला लिया, और इस मिलाने के लिए उन्होंने जो उसको रेटिफाई किया वो क्वेटा म्युनिसिपैलिटी के द्वारा कराया, जो कि एक बाहरी लोगों की, जो पंजाबी और बाहर के जो लोग आए हुए थे उनसे डोमिनेटेड थी। उस जमाने में जो क्वेटा म्युनिसिपैलिटी थी उसमें बलोचों की संख्या बहुत ही कम थी। तो इस बॉडी ने पहले तो उसको रेटिफाई किया, फिर दूसरा मुस्लिम लीग ने जो काम किया वो ऐसा किया कि उन्होंने लात बेला खरान मकरान को एक इंडिपेंडेंट रियासत का दर्जा दे दिया और फिर इनको अपने में मिला लिया। जहां तक सवाल कलात का है, गौसबख्श बिजेंजो साहब ने वहां की पार्लियामेंट में बहुत ठीक तरह से कहा था कि सिर्फ इसलिए कि हम मुस्लिम हैं अगर हमें पाकिस्तान से मिलने को कहा जाता है तो फिर अफगानिस्तान और ईरान को भी कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान में मिल जाए। और उन्होंने ये कहा कि लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में बिना मिले नहीं रह सकता, पर हकीकत यह है कि बलूचिस्तान के पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कोस्ट है, हमारे पास पोर्ट है, पाकिस्तान हमारे बिना नहीं सर्वाइव कर सकता। तो उसके बावजूद जो मार्च में जो उनको पाकिस्तान में मिलाया गया वो फौजों को भेजने के बाद किया गया, और उसका प्रिंस करीम ने उसी वक्त अपोजिशन किया और उस टाइम वो रिबेलियन शुरू हुई, जो पहला बलोच विद्रोह शुरू हुआ। और सबसे सिग्निफिकेंट जो चीज है वो ये है कि सन 1948 में जब बाकी पाकिस्तान पाकिस्तान के बनने की खुशी मना रहा था, बलूचिस्तान में लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये दिखाता है कि सन 47 से सन 48 से बलूचिस्तान के जो आवाम था वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था।
जी, आजकल कराची में भी बलोचों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है वहां पर, और वहां पर उनके जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। कुछ आपको इस बारे में भी मालूम है, वहां पर बलोचों पर जो टारगेट किलिंग वगैरह हो रही है कराची में, वो कराची की पूरी मशीनरी जो है वो सब माजरों के हाथ में है और वहां पर माजरों की हुकूमत है?
देखिए, मेरी जहां तक जानकारी है कि मुहाजिरों ने जो हमले किए वो कुछ पठानों पे किए थे, पर अभी जैसा कि आईएसआई के एक पुराने आईबी के एक पुराने अफसरान ने अपना जो खुलासा किया है उससे ये लगता है कि ये आईएसआई और इंटेलिजेंस एजेंसीज की हमेशा से कोशिश रही है पाकिस्तान में कि जो कम्युनिटीज हैं वो एक दूसरे से लड़ती रहें, स्पेशली जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जैसे बलोच हैं, पठान हैं, सिंधी हैं, मुहाजिर हैं, ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहें जिससे कि जो पंजाबियों की जो डोमिनेशन है वो पाकिस्तानी स्टेट पर बनी रहे। और दूसरी चीज जो समझने की है वो ये है कि एक सोमियानी पोर्ट बनाने की काफी समय से कोशिश चल रही है जो कि कराची के काफी पास बनेगा। तो ऐसा लगता है पाकिस्तानी हुक्मरानों को कि इस सोमियानी पोर्ट के बनने के बाद जो कराची के जो आवाम है वो सोमियानी तक फैल जाएगा और इस तरीके से बलोच शायद अपने ही एरिया में एक माइनॉरिटी बन जाएंगे, क्योंकि बाहर के लोग आके यहाँ पे सेटल हो जाएंगे तो बलोच का जो प्रोपोर्शन है, जो उनकी पॉपुलेशन है, वो शायद बलूचिस्तान के अंदर काफी कम हो जाए।
जी, ग्वादर के बारे में आप क्या कहते हैं?
देखिए, ग्वादर जो पोर्ट है ये पाकिस्तान और चाइना की एक कमर्शियल इंटरेस्ट है। ग्वादर का लोकेशन जो है बहुत अच्छा है, लेकिन ग्वादर पोर्ट के बनने से, और जैसे उसको बोल रहे हैं कि एक दूसरा कराची बनेगा, आप ये समझ सकते हैं कि कराची जितनी पॉपुलेशन अगर बाहर से लोगों की आ जाए ग्वादर में, तो जो बलोच हैं वो बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी बन जाएंगे। आपकी जो प्रोविंशियल असेंबली होगी उसमें ही आपके आपसे ज्यादा बाहर से लोग आने लगेंगे। तो ग्वादर पोर्ट मेरे ख्याल से जिस तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि उसके जो जो भी प्रोजेक्ट की जो काम हो रहा है वो सारा इस्लामाबाद की देखरेख में हो रहा है, ये मेरे ख्याल से बलोचों के हक के खिलाफ है। अगर ग्वादर पोर्ट को बनाना भी है तो उसको किस तरीके से बनाना है, उसका क्या डेवलपमेंट होना है, ये बलोचियों को दे देना चाहिए कि वो उस जमीन को करें। और अभी क्या हुआ है कि जो ग्वादर पोर्ट के आसपास की जितनी भी जमीन है उसे बाहर वालों ने उसको उस पर कब्जा कर लिया है। जो ग्वादर से लेके कोस्टल हाईवे के आसपास की जितनी भी जमीन है उसको अंडरवर्ल्ड से मिलके पंजाबी और बाहर के लोगों को बेच दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि इस जो जमीन है जो कि बलोच की ट्रेडिशनल लैंड है उसको दूसरों को दे दिया जाए और इस तरीके से दूसरे लोगों को इस एरिया में लाके सेटल कर दिया जाए, जिससे कि ये जो कोस्टल एरिया है जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है ये बलोचों के हाथ से निकल जाए।